परम पूजनीय महाराज श्री, आपके चरणों में वंदन करते हुए वंदे गुरु परंपराम। ये जो परंपरा है, गुरु के साथ संयोग होने से भक्त भी गुरु के तरह से बन जाता है, क्योंकि जैसे पुष्प में बैठा हुआ भमरा भ्रमर जब पुष्प देवता पर चढ़ता है तो साथ में वह कीट भी देवता पर उसके साथ चढ़ जाता है। जैसे यहाँ जो मंदिर का एक एक तत्व है, एक एक गमले हैं यहाँ के, एक एक पुष्प है, वह भी दिन रात भजन सुनते हैं, तो यहाँ जो जड़ नहीं सचेतन प्राणी है, वह श्वान ही क्यों न हो, कुत्ता ही क्यों न हो, वह भी भाग्यशाली है कि उसे विष्णु सहस्र नाम सुनने को मिलता है, उसे कथा सुनने को मिलता है। क्योंकि अपने यहाँ ब्रज के कवि थे रसखान, वह कहते थे कि मेरा यदि पत्थर में भी जन्म हो तो मैं गोकुल में पहाड़ के रूप में जन्म लूं, यदि पक्षी में मेरा जन्म हो तो भी मैं वृंदावन में जन्म लूं, और यदि मेरा कीट पतंग में भी जन्म हो, खग में जन्म हो, तो भी मैं वृंदावन भगवान के सेवा में ही रहूं। तो ऐसे देवालयों में आने वाले वो पैर धन्य हैं, वो सुनने वाले कथाओं को वो कान धन्य हैं, और देवताओं और गुरुओं के विषय में सुनने वाले की मस्तिष्क भी धन्य है, जो इस कलिकाल में भी कुछ न कुछ भजन और सत्संग के पास में आते हैं। तो फिर वो जीव क्यों न धन्य है जो चारे चारे पैरों से चल करके और भगवान के समीप में रहता है और भक्तों से सेवित और पूजित होता है, क्योंकि वह साक्षात अवधूत का एक दूत है, क्योंकि उसमें भी एक भक्ति है, वह जो खाता है उसको संपूर्ण भक्ति में ही निर्वाह करता है, क्योंकि उसके भक्ति के लिए ही उसका जीवन है। जैसे प्राचीन काल में देवता लोग भगवान के साथ अवतरित हुए, उसी तरह जो जय महाराज हैं, उनके यहाँ जो इनकी विभूति है, उस विभूति के ईंट पत्थर जीव कीट पतंगे सब भी सब धन्य है, यहाँ की लताएं धन्य है, जो हमेशा विष्णु सहस्र नाम और राम हरे कृष्ण सुनते हैं। ऐसा सौभाग्य दूसरे को नहीं प्राप्त होता है। मैं तो इसको अपने ऊपर मैं अपना अनुग्रह समझता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ महाराज श्री बड़े आराम से सुनते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हैं, यह हमारे ऊपर अनुग्रह कहलाएगा, यह सामान्य बात नहीं है। मैं किस खेत की मूली हूँ, और माघ में तो मूली का भी भक्षण नहीं किया जाता है, माघ में गाजर का भक्षण नहीं किया जाता, फिर भी मैं मूली हूँ अथवा मूला हूँ, लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से एक सेवा देने का एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो उस सेवा में जितना हो सकता है उतना करता हूँ, क्योंकि एक अध्यापक अपने हिसाब से जो उपस्थित होता है आपकी सेवा में प्रस्तुत करता है। यहाँ कहते हैं कि भगवान जो ऐश्वर्य से जो संपन्न है वही भगवान है, जिसका बालक रूप भी बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर देता है, अतिरथियों को परास्त कर देता है, ऐसी भगवान की लीला है, ऐसी भगवान की विभूति है। बतला रहे हैं कि एक बार भगवान सोए हुए थे और जो बैलगाड़ी होती है शकट, उस शकट के नीचे खेल रहे हैं, पांव उछाल उछाल करके खेल रहे हैं उस शकट गाड़ी के ऊपर, उसको छकड़ा कहते हैं शायद गुजराती में, उसके गाड़ू बलद गाड़ू आता है, बलद गाड़ू तो उस गाड़ू के ऊपर पूरा वो मटके लदे हुए थे और उसपे भांड कुंभ ये सब पड़े हुए थे। अचानक भगवान खेलते खेलते अपने पैरों से मार दे रहे हैं बालमुकुंद, और वो गाड़ू उलट जा रहा है, और उसके उलटने के साथ जो उसके ऊपर रखे हुए मटके हैं वो फूटते हैं, धड़ाधड़ आवाज होता है, सभी ब्रजवासी वहां इकट्ठे हो जाते हैं और सब रोते हैं, घबराते हैं, अरे कान्हा यही है, इसको क्या हो गया, कुछ हुआ तो नहीं, देखो देखो क्या बताएं। सब माता यशोदा इत्यादि उपस्थित होते हैं और कहते हैं, ये कन्हैया तेरे को क्या हो गया, तो इतने छोटे में ही इतने सारे यहाँ उपद्रव होने लगे। बड़े लोग चिंतित हो गए, फिर बालक को उठा लिया और उठाने के बाद दही अक्षत फूल इत्यादि से उस गाड़ी की तो पूजा किया ही कि ये सकट के चलते जान बच गया है, नहीं तो शरीर पर गिर जाता तो क्या होता। ये तो पता नहीं था कि ये भगवान है, माया देवी जो है वो सबको आवरण में रखती है, ढक लेती है। उस अपने यहाँ जो जड़ पदार्थ है ना उनकी भी पूजा है। कहा क्यों, तो कहा कि यह परमात्मा की एक इच्छा है कि यह जड़ पदार्थ होकर के हमारे लिए समर्पित है, क्योंकि इसमें भी कोई न कोई सत्ता है, इस बिल्डिंग की कोई न कोई वैलिडिटी है और कोई न कोई शक्ति है जो इसको धारण किए हुए है, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। एक समय आएगा कि एक बिल्डिंग अपने आप ही इसके टुकड़े टुकड़े किनारे हो जाते हैं, चिथड़े उड़ जाते हैं बिना किसी के गिराए, क्योंकि जो उसमें ईश्वर की शक्ति है इसी के चलते वो अणु अणु परमाणु परमाणु सट करके ईंट बनता है, मिट्टी मिट्टी सट करके इतना मोटा होता है और फिर मिट्टी से ईंट बनता है। यदि ईश्वर इच्छा न हो तो न ईंट बने न पत्थर बने, क्योंकि प्रलय काल के बाद जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने चलते हैं उस समय में सभी एक द्रव्य दूसरे से अलग अलग होते हैं, उनमें कहीं न कहीं संयोग ही नहीं होता है, इसलिए भगवान ने स्वयं ही उसमें अपनी शक्ति डाली और शक्ति डाल करके कहा कि तेरी बेटा वैलिडिटी इतने दिन तक तू जा काम कर, जैसे हमारी आपकी वैलिडिटी है उसी तरह से इन ईंटों की, इन पत्थरों की, इन अणु की परमाणु की भी वैलिडिटी है। बाद में फिर सब लय हो जाते हैं, तो जो शक्ति है ना यह ईश्वर की शक्ति है, इसलिए हम लोग एक जड़ पदार्थ की भी उपेक्षा नहीं रखते हैं। इसलिए हमारे यहाँ नमः शंभवाय च मयो भवाय च असमा चमे, असमा कहा पत्थर को, मृतिका चमे मिट्टी, गिरयस चमे हमको पर्वत मिले, हम पहाड़ की पूजा करते हैं, गोवर्धन की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने कराया, कहा परम वैराग परम ऐश्वर्यशाली इंद्र की पूजा बंद करा करके गोवर्धन पहाड़ की पूजा कराना, क्या ये कम है क्या। अभिप्राय यह है कि गोवर्धन की पूजा हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे लिए उपयोगी है, जो उपयोगी बने उसकी पूजा हमेशा की जानी चाहिए। ग्वाल बाल जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ गायें चरती है, जहाँ गोवर्धन से फूल पुष्प मूल फल कंद मिलते हैं, वह हमारे जीवन का आधार है, जीवन को धारण करता है। आधार वह है जो धृ धारणे धातु से, जो हमको धारण करे, जिस पर हम रहें वह आधार है। साचु सदा धार समाधि निष्ठ अशु प्राण कहते हैं, माने अशु मतलब प्राण के साथ हमको सदा धारण करने वाले हैं, फिर भी अपने समाधि स्थिति में निश्चित निष्ठ है, तो उस पहाड़ में उस पर्वत में भी भगवान उसको धारण करते हैं और वह अपने समाधि में वहां लीन है। आप पत्थर को तोड़ोगे या मारोगे, पत्थर बोलेगा नहीं कि हमको क्यों तोड़ रहे हो, क्यों, क्योंकि वो समाधि दशा है उसमें। उस पत्थर की पूजा हम शिव रूप में करते हैं, हम गोवर्धन रूप में करते हैं, चाहे वह रूप हो, चाहे वो विरूप है, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो अलिंग हो, हम सबकी पूजा करते हैं क्योंकि ये अपनी संस्कृति है। तिनका कबहुन निंदिए जो पायन तर हो, जब उड़ के आखन पड़े पीर घनेरी हो। एक छोटे से तुक्ष तृण को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी हवा का संयोग मिल जाएगा तो आंखों में आकर यदि पड़ गया तो घंटा दो घंटा तो हमारी आंखों को पीड़ा देगा ही। इसलिए सबकी पूजा, सबकी वंदना ये अपनी संस्कृति है। इसलिए सकट की पूजा हो रही है कि हे सकट, तूने हमारे लाल को बचाया, भगवान ने गाड़ी को मारा, गाड़ी गिरी, भांड फूटे, शुरू से ही लीला चालू हो गई। क्योंकि जो उपद्रवी होते हैं ना, उपद्रवी तो उनको नहीं कहेंगे, लेकिन जो बालक होता है वो बालक चंचल ही होता है। यदि उसकी चंचलता न हो तो लोग कहेंगे कि यह बीमार पड़ गया है। तो भगवान पैर उछाल उछाल करके खेलते हैं। कुछ लोग कहते हैं वह एक असुर था और सकट का रूप धारण करके उसको कंस ने ही भेजा था भगवान के वध के लिए, लेकिन भगवान में एक भगवान के एक पैर के धीरे से मारने से, धक्का देने से वह सकट जो है खंड खंड होने लगा। इसलिए यह भगवान का अपना ऐश्वर्य है कि जिसके एक छोटे से अंग में इतने सारा बल है। आगे आप जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान एक उंगली पर गोवर्धन को धारण करते हैं। यह भगवान है क्योंकि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र ऐश्वर्य जहां जाकर के निहित होता हो, जैसे बट के वृक्ष में बड़े बड़े हजारों बट वृक्ष आ जाते हैं उसके बट के बीज में, उसी तरह से एक परमात्मा के छोटे से अंश में सारे जितना ब्रह्मांड है वह भरा पड़ा है। वो अपने शक्ति से ओतप्रोत है, कह नहीं सकते हैं कि कितना है। कोई भी वैज्ञानिक इस धरती का यह नहीं बतला सकता है कि इस विश्व की जनसंख्या कितनी हो सकती है। कोई बतलाएगा क्या? क्योंकि वो उसके बस में नहीं, वो अव्यक्त है। तो ईश्वर की कितनी लीलाएं अव्यक्त है, उसकी कितनी शक्ति है वो अव्यक्त है। जब उसका कार्य दिखता है यह सारा संसार, तब यह व्यक्त रूप में आता है। तो जो अव्यक्त से व्यक्त रूप में आता है और व्यक्त को भी अव्यक्त कर देता है, जो कारणों का कारण है और कार्य रूप में भी है और कार्य कारण दोनों से पृथक भी हो जाता है, ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा की लीलाओं को कहना बड़ी कठिन बात है। फिर भी क्योंकि भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, मद्यात्रया व्यापकता हताते स्तुत्युक्ति भुर्वाक परता हताते ज्ञाने न चेतः परता हताते क्षमस्व संभो त्रिविधा अपराधम। हे प्रभु, मैं यदि यात्रा करता हूं तो आपकी व्यापकता नष्ट होती है, क्योंकि आप तो सभी जगह हो। तो यदि मैंने यात्रा किया, मैं मंदिर गया, तो इसका मतलब है कि यहां पर मैंने आपका ध्यान नहीं किया, तो यह मुझसे अपराध हुआ। और आप वाणी के विषय नहीं हो,